चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापद्माय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतुष तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नये मां चरणं भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् आज हम लोगों का दशम दिवस है। भगवत कृपा से सुशृंखल रूप से निर्विघ्न रूप में हम लोगों का अभी तक अनुष्ठान चल रहा है। कल हम लोगों की बहुत सी भागवत की कथाएं हुई, इसमें सभी लीलाओं में शिक्षापूर्ण भाव है। लीला कथाएं तो है ही हैं, साथ में हम लोगों के लिए शिक्षापूर्ण भी है। जैसे बलदेव जी समस्त तीर्थों के लिए जा रहे हैं, गंगा जी जब पृथ्वी पर अवतरण कर रही थी उस समय भगीरथ जी की तपस्या के आराधना के पश्चात उन्होंने कहा, मैं भूलोक में जाना नहीं चाहती, यहां पर बड़े पापी लोग हैं, धर्म ध्वजी लोग हैं, कुछ लोग धर्म भी करते हैं कि तू उसकी आड़ में पाप करते हैं, जब जाऊंगी तो वो सब पाप हमारे अंदर में धूल करके दे दे, इसलिए मैं डर रहा हूं। भगीरथ जी भी के ऊपर भी साधु संतों की कृपा थी, विशेष करके कपिल देव जी की कृपा थी। उन्होंने कहा, जी माता भगवती आपको डरने की कोई जरूरत, एक तो आप समस्त तीर्थों को आप में जितने भी पाप धुलेंगे वो सभी दूर हो जाए, आप में जितने गंदे नाला जैसे बहते हैं ना, गंगा जी में जाते हैं तो गंगा जी ही बन जाते हैं, ऐसे पाप भी यदि आप में जाएंगे तो वो भी पवित्र बन जाएंगे। और मान लिया कि किसी हालत से हम मैंने मान भी लिया है जो वो पाप आप में धोएंगे, तो भगवत विग्रह सब अवतार समूह और बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े भक्त लोग सब आप में को स्पर्श करके उस मलिनता को दूर करके फिर आप में नम्रता सजीवता सरसता ला दे। मानो उन्हीं सब वचनों के लिए बलदेव जी स्वयं भगवान होकर के भी और तीर्थ में जा रहे हैं, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए और कितनी सब लीलाओं को करने के लिए जा रहे हैं। जगत मन मंगलमय। जब वो नमिषारण्य में पहुंचे तो लोमहर्ष संसूत व्यास जी का शिष्य वो पुराण इत्यादि पठन कर रहा था, सब बड़े बड़े श्रोता उसमें थे, उसमें कुछ कमी थी। जिस समय में वो आए देखा सब जो जितने ऋषि महर्षि थे ब्रह्मवित्ता ब्रह्मर्षि भी राजर्षि भी सब उठ करके उनका अभिवादन किया, किंतु वो अभिमान में मत होकर मैं सबसे बड़ा हूं व्यासासन पर उच्च बैठा रहा। अजय ये ऋषि लोग हमको सम्मान देते हैं तो ये क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के आ गए तो क्या हो गया, साधारण क्षत्रिय उनको समझा, वसुदेव जी का लड़का समझा, इसलिए अभिवादन नहीं किया। अहंकार ये तो बड़ा घमंडी है, अहंकारी है, ये जो श्रोता लोग बैठे हैं ये नहीं जानता है कि हमसे ये हजारों गुना श्रेष्ठ है। केवल कथा बांचने से ही भक्ति नहीं हो जाती और उसका लक्षण नहीं है ये। नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो न बहुना श्रुते न जमे वयेश विणुते तेन लभ्य तस्सात्मा विणुते तनुषा। ये तो बहुत पाठ कर रहे हैं, यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी भी भागवत की कथा सुनाई जिसमें कि लाखों लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग नारद और सर यशोदा मैया जी से बड़े हो जाएंगे कि नहीं, इतनी कथा सुनाते हैं, नंद बाबा से तो बड़े हो जाएंगे। ये जिनकी धारणा है उनको भक्ति एकदम नहीं हुई, हजारों जनों में सुख भी यशोदा मैया की पद्धुली की और नंद बाबा की पद्धुली ब्रजवासियों की पद्धुली की क्षमता नहीं करेंगे, इस चीज को समझना चाहिए। उसी तरह से वहां पर सौनतादि ऋषि थे, वो दीनतावश भगवान की कथाओं को सुनने के लिए उनसे निवेदन किया और सुन करके बड़ा आनंद रहा, कैसे जैसे अपने छोटे बच्चे की तोतली बच्चे से बच्चे की बात सुन करके मैया को आनंद होता है, कृष्ण की कथाओं में उनको आनंद है, इसलिए उसको उन्होंने कहा उसकी स्मरण शक्ति है, कह रहा है ये लोग अपने को अग्नि जैसे अपने को ढक करके रखती है ऐसे अपने प्रभाव को ढक करके रखते हैं, लेकिन साधारण लोग उसको न समझ सके। यदि यदृच्छाक्रम से सुखदेव गोस्वामी उस सभा में नहीं आते और यदि कथा नहीं कहते तो कौन जानता जी यह रसिक और तत्वज्ञ है, कोई जानता, इसलिए यहां पर भी हम लोगों की इस सभा में भी बहुत से ऐसे आदमी होंगे जो अपनों को छिपा करके रखते हैं, महिलाओं में भी अधिकांश ऐसी होंगी जिसको हम समझते हैं जो कुछ नहीं जानती। ममता में विद्वता का संबंध क्या है, कृष्ण से ममता हो वो ममता किस चीज से आएगी, प्रवचन से आएगी ना, बहुत सुनने से आएगी न, रुपए पैसे से आएगी ना, ज्ञान और विज्ञान होने पर भी उसको होगा, ये ममता कहां से आएगी कृष्ण के प्रति। तो ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं हम नहीं जानते हैं जिनको जिनके कृष्ण के प्रति इतनी ममता है धारण नहीं कर सकते। एक बार हम लोग गए एक जगह प्रवचन करने के लिए एक चौबे के घर पर, लड़का बहुत भक्तिमान है उसके घर पर हम लोग गए, कहां जा रहे हैं झिझक रहे हैं हम लोग, ऊपर कहां कहां लेकर के जा रहा है, एक तो पतली गली और ऊपर में इधर उधर करते, हमने कहा भाई ये कहां ले आ रहा है। वहां जब उसके घर में गए और तब देखा जैसे वो सब बहुत से लोग थे विशेष करके उसके परिवारिक जब कीर्तन करना आरंभ किया उन महिलाओं ने, उसकी मैया ने, उसकी बहन ने, उसकी स्त्री ने, और वो आंख से आंसू झरने लगे। मैंने कहा जिससे इनके चरण की धूली में भी नहीं, हमारा आदर कर रहे हैं, किंतु मैं समझ गया। मैंने मन ही मन उनको हजार बार प्रणाम किया। ऐसे कितने स्थल हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को में विद्या का गौरव नहीं आना चाहिए। दो चार उपदेश गुरु जी से सुन लिया बस, अपने को नहीं ऐसा समझना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं, जिनकी ममता कृष्ण पर हमसे कोटि गुना अधिक हो सकती है। इसलिए श्रोताओं को पहले प्रणाम कर लेना चाहिए, तब अपना बैठना चाहिए। गुरुवर्ग भी बैठा देते हैं, हम लोग को गुरुवर्गों को प्रणाम करके दीनहीन होकर के तब व्यासासन पर बैठना चाहिए। ब्रह्मचारी लोग भी सावधान रहेंगे, अपने को कहीं बड़ा न समझ लें। ये हम लोग बहुत बड़े त्यागी हो गए हैं, हम लोग सब कुछ त्याग किए हैं। गृहस्थ में रह करके भी ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने सर्वस्व कुछ त्याग दिया है और ऊपर से गृहस्थ बने हुए हैं। इस चीज को समझना, वो अपने घर का तो सर्वस्व लेकर के हमको देते हैं, हम उसका भोग करते हैं। खूब सावधानी से रह करके भगवान का भजन करने के लिए हम लोग सब आए, ऐसा भी मानना है। इसलिए उनका ये देखो तो ये अभिमानी कहां, ये उनका शिष्य व्यास देव का शिष्य व्यास जी को भी कलंकित कर रहा। यदि जगत में रहेगा बहुत अनर्थ होगा, ऐसे लोगों की जगत में रहने की जरूरत नहीं है। एक कुश उठाया और कला ही काटी। कुछ लोग जो जानने वाले नहीं थे, अतत्व के थे, हाहाकार करना आरंभ किया। जब हाहाकार करना आरंभ किया, कहे तो क्या चाहते हो, इसको जीवित कर दूं? जीवित करने की भी सामर्थ्य है, मारने की भी सामर्थ्य है, जीवित करने की भी सामर्थ्य, जीवित कर दूं? नहीं नहीं प्रभु, अब हम लोग समझ गए, हमारा अपराध क्षमा हो, आपने जैसा किया उचित है। ठीक है, तब अब क्या चाहते हो? चाहते हैं कि हमको कोई कथा सुनाए, तो ठीक है। 5 वर्ष से भी छोटा, उसका छोटा सा बच्चा था, उसको स्पर्श किया और शक्ति संचरित किया और उसको उठा करके व्यास गद्दी पर बैठा, और जैसे रिकॉर्ड बजते हैं ना, यह क्या कहलाता है, ये ट्रांजिटर टेप रिकॉर्ड लगा दिया और बोलने लगता है ना, एकदम टेप रिकॉर्ड जैसा सब कुछ उसके अंदर में संचरित कर दिया। वो छोटा सा बालक अद्भुत भगवान की कथाओं को वर्णन करने लगा। पीछे से वही सुखदेव गोस्वामी की सब अपरिचित की सभा में गया, वहां पर श्रवण किया, और जैसे व्यास जी ने उनको कृपा करके शिष्य बनाया था सुखदेव गोस्वामी को, ये भी उनको अपने गुरु के रूप में वर्णन करके उनसे सब कुछ, ये सब होनी चाहिए। भागवत कथा सुनने का ये सब तात्पर्य है। यदि सुन करके ऐसी भावनाएं हम लोगों के हृदय में आए तो सचमुच में भागवत सुना, और नहीं तो सुना। यदि भागवत सुन करके रोज घर में लड़ाई होती है, 10 आदमी घर में वैष्णव है और रोज लड़ाई होती है, केवल गुत्थम गुत्थी बाकी रहती है, तो वो भागवत क्या सुनना हुआ? अरे एक कुल में एक वैष्णव वैष्णवी जन्म लेने पर उनके कितने पुरुषों का उद्धार हो जाता है, और हम यदि एक जगह में बैठ करके 10 वैष्णव नहीं रह सकते, वैष्णवी नहीं रह सकती है, तो ये हमारे गुरु जी के नाम पर कलंक होगा। अपना तो कलंकित कर रही है लोग, अरे ये व्यास जी का शिष्य है, ऐसा कहेंगे। इसलिए वैष्णवों को खूब सहिष्णु होना चाहिए। जो सहिष्णु नहीं होगा उसका भागवत सुनना व्यर्थ है। तिनादपी सुनी तरोरपि सहिष्णु, अमानी और मानद होना चाहिए। ये वैष्णव के भूषण है ना, भागवत सुन रहे हैं, यहां से गए, एक लकड़ी उठाई, पत्नी पर 2 लात मार दिया, बहन से झगड़ा कर लिया, पिताजी की बात नहीं मानी, मैया की बात नहीं मानी, ये भागवत सुनना है? घर में झगड़ा कर दिया, भागवत नहीं सुनी, बस मारा मारी कर दिया, 20 खा लिया, घर वालों से विरोध कर दिया, हम घर में ही नहीं रहेंगे, बहुत अच्छा घर में नहीं रहेगी, यही भजन का तरीका है। ये सब भजन करना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रहलाद जैसा टुकड़े भी काट देने पर कोई भी अतराज नहीं है, ठीक है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा, भागवत सुनते थे ना, उन्होंने कभी कहा कि क्यों मारा? प्रहलाद महाराज ने कोई आपत्ति की, घर छोड़ करके चले गए? यदि इतनी सही सुनता नहीं है तो क्या भागवत सम सुने? इन भागवत की शिक्षाओं को लेना चाहिए। सुना ऐसे निकाल दिया। कालिदास के दरबार में एक कहीं से आया अघड़ जैसा, उसने कहा जैसे देखो यहां पर इतने बड़े विद्वान और नवरत्न हैं, ये बतला दे कोई, ये एक खोपड़ी रख दिया, सूखी हुई खोपड़ी, दांत बाहर हो रहे हैं, आंख तो है नहीं, गड्ढा देखने में डर लग रहा है, लेकर के सामने वहां रख दिया, ये बतलाओ ये व्यक्ति मूर्ख था या विद्वान था या कैसा था? कहे ये कैसे पता लगे? विक्रमादित्य थे, उनके और सब लोग थे, कालिदास उस समय नहीं थे, और बाकी सब नवरत्न थे। कहा ये मरा हुआ मरी हुई खोपड़ी सूखी हुई, ये बुद्धिमान था कि कैसा था, ये कैसे पता लगे? कोई उत्तर नहीं दे सका। यही राजसभा है, ऐसे सभा को धिक्कार है। ये कहा क्योंकि जा रहा था, इतने में कालिदास आ गए। महाराज ने कहा जी महाराज और 2 मिनट बैठ जाइए, थोड़ा सा और समय दे दी, मोहलत दे दिया। कहा जा ठीक है। कालिदास आए तो उनसे कहा गया, पूछा उनसे भी, कहा जैसे एक सेकंड एक ये ले आओ तो झाड़ू, नारियल का झाड़ू, तो झाड़ू क्या करेंगे? अरे उसमें से एक सीख की जरूरत है, बस एक सीख ले लिया और उसके इस कान में लगाया तो देखा जो सीधा चला गया। कहा जैसे आप समझ गए तो क्या समझे? अरे ये मूर्ख नंबर एक, इसमें से लगाया इधर पे निकल गया, माने कोई भी बात सुन करके इधर से निकल जाती है, भीतर में नहीं जाती है। जब ये इधर नहीं जाती, इधर आ जाती तो मैं कहता जी ये बुद्धिमान और चला। ऐसे ही भागवत की कथा सुन रहे हैं और प्रणामी भी दे रहे हैं, दूध पीते हैं और सब कुछ करते हैं, निराहार रह करके सुनते भी हैं, और यहां से जाते ही यहीं से इधर निकल जाता है। तो भागवत सुनना क्या हुआ? उनके उपदेशों को धारण करता है, कृष्ण की लीलाओं को कर्णभूषण बनाना है, उनकी कथाओं को सब समय स्मरण करना है। ये 10 दिन की कथा हुई नहीं, 10 वर्ष के लिए चाबी दे दी गई, घड़ी अपने आप चले। आप लोगों के हृदय में भागवत की कथाएं जो सुना है, इसका निरंतर चिंतन हो, दूसरों से इसी का कीर्तन हो, इसी का स्मरण हो, तब तो। इसलिए ऐसा आप लोग करेंगे, ये 10 दिन नहीं आपके जीवन भर के लिए ये खुराक हो जाए। चाबी दे दी गई, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सहिष्णु होकर करेंगे, दीनहीन होकर करेंगे, शिष्य माने शासन को स्वीकार करने वाले बन करके रहेंगे। जो गुण है इसमें आए हैं, निरंतर भगवान के चरणों में शरणागत होकर डरना नहीं है। अब जब मैं मर जाऊंगा कि क्या होगा, मुझको अपमान कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या करना है? प्रहलाद महाराज की तरफ में हिरण्यकश्यपु के जितने भी अत्याचार है उसको भी सहेंगे, भगवान का भजन कर, तब तो समझा जाएगा जैसे ये भगवान की भक्ति और ये हो रहा है। तब उनके कहने से बलबल इत्यादि को मारा, ये सब तो कथाएं बाद। अभी आप लोगों ने जल्दीबाजी के कारण नृग महाराज की कथा, शायद नाम तो उन्होंने बतला दिया, संक्षेप में चले गए क्योंकि समय नहीं है। नृग महाराज परम धार्मिक हैं, 1-2 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ गायों का दान कर चुके हैं और प्रतिदिन अनगिनत गायों का दान करते हैं। दान करने से चित्त शुद्ध नहीं होता, बल्कि और अभिमान होने की संभावना है। इसलिए इसका महत्व नहीं, अविशेष करके कलयुग में भय दान करो, किंतु आंख नीची करके किसको दे रहे हैं क्या ये मत देखो, और मैं देने वाला ऐसा नहीं, ऐसा समझो ये भगवान की चीजें भगवान के लोगों को, उनके सेवकों को दे रहे हैं। मैं देने वाला हूं, ये हाथ दे रहा है, ये हाथ भी नहीं जाने, तब ये दान है। हरिश्चंद्र भी जैसा दान नहीं चाहिए, उनका जैसे दान की जरूरत नहीं, वो हमारे आदर्श नहीं है दान में। न भक्ति में आदर्श है। विश्वामित्र जी ने उनको कृपा करके उनका यह अभिमान छुड़ाया था क्योंकि वो परम भक्त हैं। इसलिए महाराज ने इतना दान किया कि आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, किंतु उन्होंने गायों जो को जो दान किया उसकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। पृथ्वी के धूल कण भी गिने जा सकते हैं, यह संभव है, गायों का की संख्या नहीं, इतना दान किया। किंतु एक दिन एक गाय के लिए विवाद हो गया। एक ब्राह्मण का राज्य ये तो मुझे दान पहले से मिल चुकी है, और दूसरा कहता है आज मुझे ये दान में मिली है। वो कहता है गैया मेरी, ये कहता है गैया मेरी। राजा के पास दोनों लेकर के फरियाद आए। राजा ने कहा जी ये कौन सी बड़ी भारी बात है भाई, इस गाय के बदले हम 10 गाय देते हैं, 20 गाय देते हैं, 1 लाख देते हैं, 1 करोड़ गाय देते हैं, तुम जाओ। कहे करोड़ क्या, असंख्य गाय मिलने पर भी मैं यही गाय लूंगा, दूसरा नहीं। दूसरे को कहा जी महाराज आप तो मान जाइए, मेरी ही तो गाय दी हुई है, इसके बदले में आप जितनी गाय हैं आप ले लीजिए, बड़ी विनम्रता के साथ। किंतु वो कहा जी महाराज आप गिरगिट की तरह में रुख बदलते हैं, कभी लाल कभी पीला, कभी दोनों बात एक साथ में करता है गिरगिट, इसलिए आपकी बातों पर विश्वास नहीं। अंत में दोनों ने मिलकर के कहा कि ये गिरगिट है। कहता है जी हां, अब फिर कहता है नहीं, इसको जाओ गिरगिट बन जाओ। अब वो गिरगिट बन गया, देखते देखते विराट, कहा जी हजारों वर्ष तक अपना भोग भोगो, इसका वंचना तुमने किया। महाराज मेरा क्या दोष, मैं तो ये गाय के बदले लाखों गाय दे रहा हूं, अब मेरी ही गाय हुई दी हुई थी, आप इसमें संतुष्ट नहीं हो सके। अच्छा ये विचार किया जाए तो दोष किसका, राजा का क्या दोष है, किंतु नहीं, ये सब पुण्य के कामों में, दान के कामों में ऐसा ही कुछ अनर्थ रहता है। आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। मान लें कि एक आदमी को आपने 1 लाख रुपया दे दिया, वो कहेगा दूसरा अरे देखो तो हमको नहीं दिया इसको दे दिया, उसका मन खराब हो जाएगा, उससे भी ईर्ष्या, उससे भी ईर्ष्या। ये सब काम ही ऐसे हैं, दान और ये कर्म है ना, इनसे चित्त शुद्धि नहीं होती। अंत में गिरगिट होकर के कुएं में गिरता, फिर ऐसे हजारों वर्ष तक रहा। हजारों वर्ष रहने के बाद में हमारे द्वारका के राजकुमार लोग कृष्ण के पुत्र पर पौत्र इत्यादि गेंद खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए गए हुए हैं उद्यान में, और उनको प्यास लगी, पानी पीने के लिए कुएं के पास में आए, देखा जैसे एक कुआं भरा हुआ, एक जानवर उसमें पड़ा, बहुत निकालने की चेष्टा थी नहीं निकला। अंत में कृष्ण के पास में गए, कृष्ण जी कौतूहल देखने के लिए, कौतूहल उनका तो सब जाना हुआ है, तभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। देखा जैसे ये निकल नहीं रहा, बस अपना पैर थोड़ा सा नीचे लटका दिया और उसके सिर पर थोड़ा सा स्पर्श हो गया, और वो झट ऊपर में आकर के देवता के समान परम सुंदर दिव्य रूप धारण करके उनकी कृष्ण की परिक्रमा की और स्तव स्तुति करने लगा। अजय आप कौन है, बच्चों बच्चे भी देख रहे हैं कौतूहल से, बड़ा सुंदर सुकांत बच्चे सुन रहे हैं। कृष्ण ने पूछा जी आप कौन हैं, कैसे ऐसी दुर्गति हुई, तो आप ही के वंश में पहले मेरा नाम ऋग महाराज है जिसको कौन नहीं जानता, मैं कितना बड़ा भारी दानी था, किंतु थोड़ी सी त्रुटि के वजह से ब्राह्मणों ने शाप दे दिया और मैं गिरगिट हो गया। मैं नहीं जानता हूं कि किस पुण्य के बल से, तपस्या के बल से, आराधना के बल से, न जाने किस सौभाग्य से आज आपका स्पर्श हो गया और मैं कुएं से निकल आया और मेरा उद्धार हो गया। कृष्ण ने कहा जी तुमको तो याद नहीं होगी, हमको तो याद है, तुमने इन गायों के दान करने पर एक दिन कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहां आया और कहा जैसे महाराज हमको भागवत की एक पूथी चाहिए, तो उन्होंने एक वैष्णव से भागवत की पुथी लिखवा दी और लिख करके उसको, इसलिए वही तुम्हारा ये सुकृति तुम्हारी हो गई और उसी सकृति से आज मैं तुम्हें स्पर्श करके ये ऐसा। देखो एक भागवत की पुथी का जितना मूल्य है, देने का, दान करने का, और दान करने से सेवा बुद्धि से यदि सेवा के रूप में किसी वैष्णव को दिया जाए तो कितना उसका फल होगा। और भागवतों के विचारों को लेकर के ग्रहण करते हुए दूसरों को वो भागवत की पोथी देते हैं, भागवत के विचारों को सुना करके उपदेश देते हैं, तो जगत का कितना कल्याण होगा, इससे और कोई कल्याण। देखो उसकी कैसी सदगति हो गई, बच्चों को सुना। देखो ब्राह्मण और वैष्णव और गुरु का एक कौड़ी छदाम भी तुम वंचना करके मत भोग करना। गुरु के नाम पर, वैष्णवों के नाम पर, भक्तों के नाम पर, भगवान के नाम पर कोई चीज लेकर और उनको वंचित करके, ठाकुर जी को न दे करके, वैष्णव को न दे करके अपने भोगने की स्पृहा रहेगी तो तुम्हारा न जाने क्या दुर्गति होगी। ये थोड़ी सी गलती से इसको भोगने की लालसा नहीं थी तो भी ब्राह्मणों का दी चीज नहीं वो दे सका, तो उसकी ऐसी दुर्गति। और जो अनुमति की कोई जरूरत जरूरी नहीं, आज जो लोग भगवान के नाम पर ऐसा बिजनेस करते हैं जो भगवान को नहीं देते, भगवान के घर में ही सालग्राम के द्वारा बादाम को तोड़ करके खाते हैं, उनकी क्या दुर्गति होगी। इसलिए बच्चों, ब्राह्मणों को, संतों को तुम कभी भी ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारी इसे भी बढ़ करके दुर्गति होगी। अपने वचन का पालन करना, खूब नम्र विनय के साथ लेना, इस प्रकार से शिक्षा। इस सब शिक्षा को भी हम लोगों को भी ग्रहण करने की जरूरत। सुदामा विप्र जी का कथ्य कथा आई अंत में, ये सुदामा जी की पत्नी कौन थी, उनके जो पुरोहित हैं वसुदेव जी के, गर्गाचार्य उनकी बेटी है, तो वो बेटी कैसी होगी समझो, कैसी बेटी होगी, वो भागवत ही होगी, बड़ी सदाचार और परम भक्त, सब प्रकार से आदर्श, परम सुंदरी और विदुषी। गर्गाचार्य ने उसको ये ज्योतिष और यह सब शास्त्र सुनाया होगा कि नहीं, सब सुनाया होगा, इसलिए परम विदुषी महिला थी, विद्वान भी थी, भक्त भी थी। इसलिए कृष्ण की सिफारिश से उन्होंने अपनी लड़की को सुदामा विप्र से दिया। सुदामा जी घर में लौट आए, कृष्ण ने सुदामा जी को यह पता नहीं चलने दिया जी अपने पुरोहित जी की लड़की से मैं शादी करा रहा, किंतु कृष्ण ने चला की चतुराई से उनको पता नहीं चलने दिया। सुदामा जी कभी कुछ किसी से नहीं मांगते थे, दिन रात भगवत भजन में लगे रहते, किसी प्रकार से जीविका निर्वाह करके भजन करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। शादी विवाह करने की, गृहस्थी रचाने की भी उनकी लालसा नहीं थी, उन्हें परम निष्प्रिय, निष्किंचन, अकिंचन वैष्णव थे। किंतु कृष्ण न जाने क्यों अपने सखा को अपने जैसा ही बना लिया, उनकी शादी भी करा दी। मैं समझता हूं कि सुदामा जी से कुछ वो दो अंगुल बड़ी थी भक्ति में, सुदामा जी से भी बड़ी थी, इनको तो लोग जानते हैं ना? जैसे कि बड़े बड़े विद्वान पुरुष लोग मथुरा के जग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और एक बेला खाते हैं कि वो भी निर्जला रह करके, और उनकी पत्नियां निरक्ष पढ़ी लिखी नहीं, किंतु कृष्ण के प्रति ममता किन की है, ये तो विचार करो। वो समझते हैं कि मैं बाप बड़ा भारी विद्वान, हमारी स्त्रियां अपवित्र रहती हैं, इनकी दीक्षा नहीं होती और ये वेद नहीं पढ़ सकती, ओंकार का उच्चारण नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग परम पवित्र और बड़े। किंतु यज्ञ पत्नियां उनसे लाखों गुणों बड़ी। अब इसको देखिए, सुदामा जी भगवान का भजन कर। कभी कभी वो भिक्षा भी ले आते हैं, ब्राह्मण है ना, उनको अधिकार है। और कभी कभी वो नहीं लाते हैं तो यही आसपास से कुछ भिक्षा ले आते हैं। वो देखते हैं इनको बड़ा कष्ट है, तो जो कुछ मिल जाता, कभी छिड़वा मिल जाता तो ऐसे ही पानी में भिजा करके खा लेते, कभी चना मिल जाता तो वैसे ही चिबा लेते, जो कुछ लाते उसी में ये दोनों बड़े संतुष्ट रहते। और नहीं तो ये कभी किसी से मांग लाती। अब ये देख रही कि मैं जो कुछ भी बनाती हूं रसोई, ठाकुर जी को भोग लगने के बाद मैं सब कुछ इनको दे देती हूं, और ये बेचारे खाते नहीं, सोचते हैं कि हमारी ब्राह्मणी क्या खाएगी। सब समय उनको ब्राह्मणी की चिंता, मेरी चिंता लगी रहती है, इसलिए थोड़ा सा ले लेते हैं। कहते हैं आज तबीयत ठीक नहीं, मैं इतना ही लूंगा। वो समझ जाती कि केवल मेरे लिए ये नहीं दे, उसको बड़ा दुख होता। वो तो सुख करके दुबले पतले हाड़ उनका लग गया, और आधी उम्र में ही वो भी बूढ़े हो गए। कृष्ण तो 125 तक कैसे रहे, नवकिशोर जैसे रहे, उनकी रुक्मिणी सत्यभामा भी वैसे ही बनी रही, किंतु ये ब्राह्मण कुछ दिनों में ही ये बूढ़ा हो गया। गाल पिचक गए, सूख गया, केश पक गए, पैर में दीवार आ गई, हाड़ ठठरियां लग गई, कपड़े मैले कुचैले। और ब्राह्मण क्या क्या हुआ, वो भी पति को ऐसा ही देकर के, वो भी कम तपस्वी नहीं, भक्त नहीं, निष्किंचन से निष्किंचन, बस पति की सेवा के लिए जो कुछ कर। और सोचती इनको कैसे खिलाऊं, ये सोचती है। इसलिए उसने सोचा जो हमारे घर में कुछ धन आ जाएगा तो इनको मैं सेवा कर सकती हूं। ये परम भगवत भक्त हैं, कृष्ण के सखा हैं। इस लालसा से उसने कहा आप द्वारका चले जाइए, आपके सखा हैं, उनसे थोड़ी सी भेंट कराइए। मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं किसी के सामने हाथ नहीं पसार सकता। तो हाथ पसारने वो बड़े ब्रह्म भक्त हैं, क्या ब्रह्मण्य है, क्या नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंद। तो ये ब्रह्मण्य देव, ब्रह्मण्य देव माने क्या, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले ये प्रभु हैं। और ब्राह्मणों का तो खूब आदर करते हैं, गायों का आदर करते हैं। मानना नहीं पड़ेगा, तुम चले जाओ और जो कुछ करना होगा वो प्रभु कर देंगे। बहुत जब जिद करने लगी तो उन्होंने कहा जो भगवान की इच्छा, हमारे प्रभु के दर्शन तो मिल जाएंगे, यही हमारे लिए लाभ है। मैं मांगूंगा नहीं कुछ, किंतु प्रभु का दर्शन हो जाएगा। इसलिए वो गए, चले गए। और उन्होंने, उनके घर में तो कुछ था नहीं, दूसरे के घर से मांग करके वो छिड़वा या खुद चावल का या क्या एक फटे फूटी पोटली में बांध करके दे दिया। और उन्होंने बगल में दबा लिया, बगल तो कैसा हो गया था, गड्ढा दे दिया, पता नहीं चला। और लेकर के गए। कृष्ण ने अंत में वहां पर जो सेवा और सत्कार किया ये तो आप लोगों को विदित है। कहा जैसे हमारी भाभी ने कुछ दिया तो वो कुछ नहीं, कैसे लज्जा के मारे ये देखा, जो वैभव देख करके आश्चर्यचकित हो गए। और वो पोटली के लिए देने के लिए उनको बहुत लज्जा मालूम हुई। तो वो अभी आनाकानी कर रहे हैं तब तक प्रभु ने क्या किया, अरे तुम्हारे बगल में ये क्या झूल रहा, और जबरदस्ती निकाल लिए। कैसे हो प्रभु, कैसे ये दयाल निकाल करके उसके सामने, देखते देखते स्त्रियां और सब लोग हैं, एक मुष्टि निकाला और मुख में दे दिया, सूखे चिड़वे भी सूखे, उसमें क्या रस, उसमें पानी दो तो रस, नहीं तो रस कहां उसमें से। कृष्ण ने ऐसी कभी चीज कठिन और निरस चीज नहीं खाई, किंतु मुख में दे करके बोले ओहो क्या अपूर्व, तुम लोगों के बनाए हुए पदार्थ में उतना आनंद नहीं, इतना रस नहीं, माधुर्य नहीं आज इस चिड़वे में, ये कह करके और एक मुट्ठी दिया। जैसे लिया रुक्मिणी ने हाथ पकड़, सब कुछ तो इसको दे दिया क्या हमको भी दे दोगे तो हम कहां रहेंगे। कृष्ण मुस्कुराने लगे, ये बड़े लज्जित हो गए। दूसरे दिन कहा जे प्रभु अब मैं चलूं, हाँ खूब आनंद से चले, क्योंकि आपकी, हमारी भाभी आपके लिए चिंता कर रही हो, ये भी नहीं कहा एक पीली धोती उसमें 2 रुपये बांध करके गांठ दे करके दे दे, कुछ भी नहीं दिया। काजे चलो चलो मैं आपको दे आऊं, भाभी आपकी बड़ी चिंता कर रही हूं, ये कह करके गांव की सीमा तक बड़े प्रेम के साथ में गए। प्रभु ने उनको प्रणाम इत्यादि कर करके और वहां से जब लौट करके आए तब ये सोच रहे हैं देखो हमको कुछ भी नहीं दिया, बड़ा अच्छा किया इस तरह से। तो ब्राह्मणी के पास में जाएंगे तो वो कहेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा, किंतु अच्छा हुआ कुछ नहीं दिया, यदि देते तो मैं वैभव तो देते और उसमें मैं रह जाता, उनका भजन नहीं होता। बिना अकिंचन निष्किंचन हुए भगवत भजन कभी भी संभव नहीं है, ये मेरा है ये मेरा है ऐसा नहीं। सुखदेव गोस्वामी अकिंचन है, नारद जी अकिंचन है, हरिदास ठाकुर जी अकिंचन है, महाप्रभु के परिकर लोग बड़े बड़े प्रताप रुद्र राजा राजा रहने पर भी पुंडरीक राजा होने पर भी अकिंचन है, रघुनाथ दास गोस्वामी राजकुमार होते हुए भी दीनहीन अकिंचन है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हैं इतने वैभव के मालिक होते हुए भी दीन और अकिंचन है, बस कृष्ण ही मेरे हैं और कुछ मेरा नहीं। ऐसा होगा तो भाई भजन होगा और ये भागवत सुनना होगा, ऐसे ही भगवान भगवान का भजन नहीं हो जाता। तो सोच रहे हैं और चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ नहीं तो मैं उनको विस्मरण हो जा। और जब वहां गए ना अपनी कुटी के पास में तो क्या सुना आप लोगों ने देखा, जे 16,000 सखियों के साथ में 16,108 सखियों के साथ में कोई रानी उनको राजकुमारी नवकिशोरी उनके तरफ में माला लेती हुई आरती उतारने के लिए ये सब करती हुई शंख नगाड़े सब बज रहे हैं और आ रहे। अरे हमारी गैया कहाँ वो गई और हमारा वो हमारी कुटीर कहाँ गई, कहाँ सब चला गया, ये चिंता कर रहे हैं। इतने में वो आ गया रही कही हमारे तरफ में क्यों, वो सुख चाह करके थोड़ा पीछे हट गए और मुस्कुराती हुई आगे बढ़ करके गले में माला दे दी और आरती की उसके स्पर्श से ये भी राजकुमार जैसे परम सुंदर एक नवजीवक बन गए। प्रभु जी ने ये सब क्यों दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, सोच रहे हैं प्रभु रात में ये इस ब्राह्मण ने अपने घर में कुछ नहीं था, कहीं से मांग करके लेकर के दिया और मेरे पास तो कितना अनंत वैभव है, मैं यदि अपना यहां का द्वारका का सब वैभव दे दूं तो हमारे वैभव के सामने ये कितना वैभव है। प्रभु रात में वर्षा देते हैं, कृषक लोग सो रहे हैं, उसमें बड़ी जोर से वर्षा हुई, खेत भर गए पानी से और जब सवेरा हुआ तो देखा जब पानी बंद हो गया है, खेतों में एकदम सब पानी लहला रहा है, बढ़ रहा है सब आनंद से उनका हृदय दिखा करके नहीं देते। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भगवत भक्त होते हैं किसी को दिखला करके कोई वस्तु नहीं देते हैं, इसलिए भगवान उनके जो आराध्य हैं वो दिखला करके देंगे, नहीं दिया। किंतु उनकी रानियों ने एक एक गैया दी, कितनी हो गई, एक एक लोटकिया दे दी, एक एक स्वर्ण की आसन दे दिया, यदि उस समय देती तो ये कैसे ले जाते, यदि उस समय में एक एक महिलाएं उनकी स्त्रियां एक एक सोने का हार लगा देती तो क्या करते, गिर पड़ते वो, इसलिए उस समय नहीं दिया, असमर्थ थे इसलिए छिपा करके ये सब दिया। वो वहां पर पहुंच, यहां पर कृष्ण चिंता कर रहे हैं, वहां पर पहुंच गया, वहां पर गए तो हाथ जोड़ करके प्रभु आप ऐसे दयालु हैं, मैं नहीं चाहता था अब हमारा भजन नष्ट हो जाए, आकाशवाणी हुई या प्रभु ने अंतर में प्रेरणा दी, तुमको कोई भय नहीं, मेरा भरत हस्त तुम्हारे हाथ के ऊपर, समस्त भोगों में रह करके भी भोग तुम्हारा और माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, यहां तने बाध में तुम्हार विषय अतरम, महाप्रभु जी ने भी ऐसा कहा था। इसलिए जो चाहते हैं भगवान उनको सर्वस्व नष्ट कर देते हैं न, हरिष्य तब धनम शनैः, भगवान के भजन में बाधा होती है, इसलिए जो चाहते हैं कि और धन 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 आ जाए, भगवान की कृपा होगी, उनका सब कुछ हरण कर लेते हैं। और तिस पर भी यदि वो नहीं छोड़ते हैं प्रभु को, तो क्या करते हैं, सब कुछ छप्पर फाड़ करके। इसलिए जिनको इनको समझा जाए हाँ ये योग्य है, इसलिए उनको दे दिया। प्रहलाद को योग्य है, इनको दे दिया। साधारण लोगों को नहीं देंगे, या उसे रह करके मर जाएगा। इसलिए इन सब शिक्षाओं को ग्रहण करके आगे की कथा सुने, और इन कथाओं को जिनको हम लोगों ने सुना है उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण करते हुए सब समय भागवत की कथाओं का स्मरण चिंतन और गुणगान। बस यही हमारा आप लोगों का भागवत सुनना, और यही हमारे लिए दक्षिणा होगी। पैसा हमारे लिए दक्षिणा नहीं होगा, कपड़ा दक्षिणा नहीं होगा, कोई भी संसार का वैभव ये सब तो बच्चे लोग भी छोड़ करके आए हैं, ये हम लोगों को चिंता नहीं। आप लोग इस हमारी इस संपत्ति को आप लोग ग्रहण कर सके, जैसे सुखदेव गोस्वामी के संपत्ति को परीक्षित महाराज ने ग्रहण किया तो वो बड़े प्रसन्न हो गए। और गए कैसे, जब कथा खत्म हो गई तो कैसे वो गए, सब बटोर करके ले गए ना, कैसे गए, जैसे आए थे प्रभु का स्मरण करते हुए चले। इसलिए आप लोग इस भागवत रूपी संपत्ति को अपना करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। एक छोटी सा कीर्तन लीजिए नंदमल जी।